डॉक्टर के साथ। हाँ डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो।
जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं,
भगवान जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं,
बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो, बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो, डॉक्टर के साथ,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, ओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ,
अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ,
हर पल करते प्रभु का ध्यान सांसों में वो साज भरो, हर पल करते प्रभु का ध्यान सांसों में वो साज भरो, डॉक्टर के साथ,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं,
डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं,
आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो, आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो, डॉक्टर के साथ,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो,
डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो।
ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस सत्र के लिए हम सब के बीच में आए हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर श्रीमन साहू जी, हम उन्हें मंच पर बुलाते हैं और करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप करीब पिछले 32-33 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, ओडिशा से हैं आप, वहीं पर आपको ज्ञान मिला, और फिर 91 से हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल यहाँ पे बना, मुझे लगता है बना भी शायद 91 में है, तो ग्लोबल हाँ तो डे वन से मतलब ग्लोबल हॉस्पिटल के आदि रतन है, और आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं। ऐसे तो आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि मैंने आपके मुख से आपके ही द्वारा ग्लोबल हॉस्पिटल में सुना था कि शुरू में जब आए थे तो आपको शायद वो एक्सरे वाला डिपार्टमेंट था, तो जब भी इनको कोई देखता था तो कहते ओ फोटो वाला भाई। और फिर शायद वो एनेस्थेसिया वाला मिला, तो फिर जब उनको अरे वो बेहोश करने वाला भाई तो इन्होंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगता है फोटो वाला भाई और बेहोश वाला भाई बोलते। और फिर चूंकि पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, तो इन्हें कहा गया कि आप डायबिटिक्स का कोर्स करो, तो वो करके अब डायबिटोलॉजिस्ट बन गए आप। और पिछले कितने वर्षों से कैंप चलाते हैं? पिछले 12 वर्षों से डायबिटिक का ही देखते हैं, और अभी तो हर हफ्ते बाहर टूर में जाते हैं, और यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि कैसे डेली लाइफ स्टाइल में चेंज लाकर हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज तक इन्होंने 300 प्रोग्राम कर चुके हैं, और यहाँ पर भी हर हफ्ते कुछ न कुछ चलते ही रहता है। आपका जब ये शिविर आरंभ हो रहा था तब हमने आपको फोन भी किया था इन्हों को, तो कहा मैं तो जा रहा हूँ आज तब फिर हमने कहा लौटोगे कब, तो फिर बताया, तो आज उनका रखा गया है प्रोग्राम, तो आज आपके सामने है। व्यवहार से तो आप देखते ही हैं, बहुत मधुर भाषी हैं, बहुत हल्के फुल्के हैं, नम्र चित्त हैं, हंसाने वाले हैं जी। डॉक्टर श्रीमंत साहू जी, हाँ ये फोटो वाले भाई है, अभी डायबिटीज वाले है ना, अभी पहले फोटो वाले थे, फिर वो बेहोश करने वाले थे, अभी मीठा बनाने वाले, हर रोग से मुक्त कराने वाले। तो ऐसे हमारे मीठे वजन घटा, देखो खुद कितने स्लिम है हम। एक बार मुझे याद है शीलू बहन को थोड़ा कुछ हुआ था, तो गए थे हॉस्पिटल, पर हमने वेट किया था अपना भी उनका भी, तो कैसे नहीं, वैसे थोड़ा है तो जरूरत से ज्यादा, लेकिन चलेगा तो मतलब हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम जिसको वास्तव में सही मान रहे हैं डॉक्टरों के हिसाब से वो सही नहीं, वो भी ज्यादा है, और उसका एग्जाम्पल खुद स्लिम रह के बताते हैं कि देखो हम कैसे है तो बहुत ही मधुर भाषी हमारे, बहुत ही ज्ञान युक्त आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, भले हेल्थ से संबंधित होगा लेकिन आप देखेंगे इसमें बाबा का पूरा ज्ञान भी भरा हुआ होगा। और तभी बाबा कहते हैं कि अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन डेली लाइफ में ही इस ज्ञान को आप घोलते चले जाओ और आपकी जीवन बन जाएगी। तो हम निवेदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी से।
ओम शांति। थैंक यू बहन जी। जीवन में सचमुच मैं बताऊं, मैं जो कुछ भी सीखा हूं हमारे बहनों से, मैं जब इस संस्था में आया था मैं तो पूरा बैंगन ही था, बेगुना बैंगन कहते हैं ना तो जीवन में कैसे बोलना, जीवन क्या है, क्या खाना क्या पीना, कैसे जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ बहनों से ही सिखाऊं, बाबा से थ्रू बहनों दे। हम दुनिया में आजकल पढ़ा लिखा हो के एक प्रोफेशनल मैन बनते हैं, टेक्निकल मैन बनते हैं, लेकिन जीवन क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे बोल कैसे होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, कोई नहीं सिखाता है। तो सचमुच मैं जिस समय इस संस्था में आया, मैं पढ़ाई पूरी करके एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन किया था। डेली 250 आइए स्वागतम आइए डेली 250-300 पेशेंट देखता था ओपीडी में। इतना बिजी सरकारी नौकरी में, आप जानते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई क्यू में तो अपॉइंटमेंट से तो आएगा नहीं, एक ही साथ मच्छी बाजार जैसा चारों तरफ 25 आदमी घेराव करके आगे पीछे चिल्लाते रहेंगे सब, डॉक्टर साहब जल्दी करो, डॉक्टर साहब डायरिया हो रहा है, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, कैसा लगेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा था थोड़े समय के अंदर ही मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाए कि हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो कोई चिल्लाए तो खाली अलग बात है, लेकिन बैठा हूं ऐसे चेयर में, एक व्यक्ति एकदम नजदीक आएगा, क्या हुआ? कुछ बोलना नहीं है, क्या हुआ? एक हाथ मेरे छाती में इधर, दूसरे हाथ मेरे पीठ में, जोर से दबा के, डॉक्टर साहब मेरा यहां दुखता है, मेरा यहां दुखता है। अरे भाई तू तेरा छाती दबा ना, मेरा छाती क्यों दबा रहा है? मैं सोचता था पागल हो जाऊंगा थोड़े दिन में। और ऐसे समय पर ही मैं ये बहनों के कॉन्टेक्ट में आया, मेरा एक महीने के अंदर मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं वहां डेली हॉस्पिटल जाते समय ऐसा लगता था जैसे कि मैं एक युद्ध के मैदान में जा रहा हूं, लेकिन वंडर खाएंगे, आई बिकम द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। मैं जब हॉस्पिटल छोड़ के आया, लोग रोते रोते मुझे विदाई दिए गए थे, क्यों डॉक्टर साहब जा रहे हो? मैं 20 साल के बाद उस शहर में गया था डायबिटीज का प्रोग्राम कराने, तो एक फील्ड में ओपन टेंट लगा के किए थे, फील्ड में जगह ही नहीं रहा, 5000 पब्लिक जगह नहीं बैठाने के लिए, बहनों ने कैंसिल करा दिया उनका रजिस्ट्रेशन। मुझे 250 डॉक्टर मिलने आए थे, मेरे क्लासमेट, मेरे जूनियर, मेरे टीचर, मेरे प्रोफेसर मिलने आए थे मुझे। तो जीवन में आध्यात्मिकता आने के बाद क्या होता है, देखिए दुनिया में कितने सारे पत्थर ऐसे इधर उधर पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मूर्तिकार के हाथ में कोई एक पत्थर आ जाता है तो एक सुंदर वैल्यूएबल मूर्ति बन जाता है, कितना वैल्यूएबल हो जाता है। इसी तरह हम सभी मनुष्य आत्माएं सब अनगढ़ंत पत्थर की तरह है, जब चैतन्य मूर्तिकार चित्रकार परमात्मा के हाथ में आ जाते हैं, वो हमें कितना वैल्यूएबल बना देते हैं, हम खुद रियलाइज करते हैं सचमुच जीवन क्या था, बाबा ने क्या बना दिया। दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है कि सचमुच। आज मैं बताऊं, मेरे दो क्लासमेट हार्ट अटैक होके जा चुके हैं, अभी सब रिटायर्ड हो रहे हैं, मेरे क्लासमेट रिटायर्ड हो गए हैं, अभी दो क्लासमेट तो गए हैं, और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, गोल्ड मेडलिस्ट है मेडिसिन का, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 2 महीना पहले उसको मसीव हार्ट अटैक हो गया, 3 स्टेंट लगा, कुछ तो इंसुलिन पंप लेके घूम रहे, कुछ तो डायलिसिस में पड़े हैं, डॉक्टर होके भी। अगर मैं सोचता हूं कभी कभी रिट्रोबैक कि मैं सचमुच बाबा के पास नहीं आता, बहनों के कांटेक्ट में नहीं आता, तो मेरा जीवन क्या होता? शायद मैं भी 3-4 स्टेंट लेके घूमता या 2-3 इंसुलिन पंप लेके घूमता। तो जीवन क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, कोई नहीं समझता है। एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है, इसके बाद जीवन एकदम निश्चिंत अनुभव होता है। बाबा हमें बादशाह बना देते हैं, बेफिक्र बादशाह, और बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह माने जिसको कोई फिक्र नहीं, बेगमपुर का बादशाह माने कोई गम नहीं, बिन ताज बादशाह बना देते हैं, कोई ताज नहीं है फिर भी बादशाह है, बिन कौड़ी बादशाह है, सफेद कपड़ा जेब खाली, हमारी दादी कहती है, फिर भी बादशाह है, और बेहद का बादशाह बना देते हैं, सारी दुनिया तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया, सारी दुनिया। तो बाबा ऐसा अनुभव कराते हैं, तो हम सब सचमुच कितना ना सौभाग्यशाली है जिन्होंने भी भगवान को पहचाना, बाबा को पहचाना। मैं कहता हूं उन जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं है। थोड़े समय के बाद देख लेना क्या हाल होगा। अभी बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं, संपूर्ण अव्यक्त हो गए हैं दोनों बाप दादा, जैसे सूर्य और चंद्रमा जब तक हैं, सितारों का कोई चमक दिखाई नहीं देते, लेकिन दोनों सूर्य और चांद जब छिप जाते हैं तब देखना सितारे कैसे चमकते हैं। अभी देखना सितारे चमकेंगे। ये दुनिया के जो स्टार है, चाहे फिल्म स्टार चाहे क्रिकेट स्टार हो, तो पाई पैसा का स्टार है, लेकिन रियल स्टार्स कैसे चमकेंगे विश्व आकाश में, आप देखना क्या होगा। अभी देखना क्लाइमेक्स आ रहा है, ये विश्व नाटक का क्लाइमेक्स, जो अपने को पूरा निखारा होगा एकदम चमकता हुआ, देखना कैसे सभी दौड़ेंगे कैसे कुछ पाने के लिए। तो हम बाबा के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, बहुत बहुत। आगे चल के लोग तो रोएंगे कि अरे हमको पहले पता था तो हम भी कुछ ले लेते भगवान से। तो आप सभी मेरे भाई बहन सवेरे सवेरे आए हो बाबा के घर में भरपूर होने के लिए। यहाँ कुछ बातें मैं जो जीवन का अनुभव मैं सुनाऊंगा, कोई क्लास करने के लिए नहीं बैठाया हूँ, आपको सुनाऊंगा। क्लास तो हमारी बहनें कराते हैं, उनके पास अनमोल खजाने हैं, लेकिन मैं जो पाया हूँ इस संस्था में, 86 में आया, आई पास आउट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज इन 83, फिर मुझे जॉब मिला 85-86 में, ज्वाइन किया इंटर्नशिप पूरा करके। तो तब से लेकर जीवन में जो इतने सालों का जो सफर है, जो हमारी दादियों का, मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तब तक खाली मधुबनी था और ये छोटा सा था। ये जो सामने का फर्श देख रहे हो वो तो मिट्टी का था, और वहाँ कोई सिगड़ी में हम पानी गर्म करते थे सवेरे सवेरे, लोट बाल्टी लेके उठा के जाके नहाते थे सवेरे, इतनी ठंडी थी, कहीं फैन था ही नहीं। तो वो दिन और आज का दिन तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन उन दिनों में दादियां इतनी प्यार देती थी, इतनी प्यार देती थी, ऐसा एक बार भी नहीं मैं जिस बार लोगों को नहीं देखा हूं, मैं भी खुद जो यहां रोते रोते नहीं गया होगा, सब रोते रोते जाते थे, कोई भी एक भी नहीं जो खुशी से, ऐसा नहीं कि यहां जाने की इच्छा नहीं होती थी। मैं यहां 5 साल में 13 बार आया, 13 times आई केम हियर, और 13 बार आया तो 13 हो गया, मैं बोला कि जाऊंगा नहीं यहां से। तो बाबा का घर ऐसा है, यहां जो प्राप्ति है दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है, सारे वर्ल्ड घूम के आओ जाके देखना। तो आए हैं भरपूर हो जाना इधर। एक बात है, हर एक मनुष्य अपना जीवन में अनुभव करता है, उसको जीवन में 3 चीजें चाहिए मुख्य रूप, ऐसे तो बहुत चीजें चाहिए लेकिन मुख्य रूप में 3 चीजें चाहिए। क्या क्या? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। 3 चीजें सभी चाहते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए, नाम मान भी सही चाहिए, शांति भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें जुड़ी, लेकिन मुख्य रूप में मैं 3 बातें कहूंगा सभी चाहते हैं, है ना। नहीं, ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका उम्र के अनुसार ये प्रायोरिटी बदलता जाता है। एक छोटा बच्चा को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है खुशी, बच्चा को एंटरटेनमेंट चाहिए, खुशी चाहिए उसको। थोड़ा सा उम्र बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते हैं, पैसा चाहिए, कैसे भी करके पैसा चाहिए मुझे, और जब 60+ हो जाते हैं सब कुछ फीका लगेगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हेल्थ ठीक रहे बस। तो प्रायोरिटी बदलती जाती है, लेकिन कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको हेल्थ तो चाहिए ही। कोई कह सकता है कि मुझे पैसा की नहीं चाहिए, लेकिन हेल्थ सबको चाहिए, है ना। नहीं, और हेल्थ है तो आप धन कमा सकते हो, बीमार है तो जितना धन है जाएगा, हेल्थ है तो खुशी भी होगी, बीमार है तो खुशी भी कहां से आएगी। तो इसलिए हेल्थ को सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और ये बात तो हमारे ऋषि मुनि साधु संत भी बहुत प्राचीन काल से अनुभव करके आए हैं, इसलिए हमारे महर्षि पतंजलि हम सभी को योगासन सिखा के गए थे। योगासन, योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ, आसन इज फॉर फिजिकल हेल्थ। आजकल आसन को ही लोग योगा योगा करते रहते हैं, वास्तव में योगा कुछ नहीं होता है, योग प्लस आसन इज कॉल्ड योगासन, ओ और आ मिला के आ हो जाता है, योगा कुछ नहीं होता है, योग प्लस आसन इज कॉल्ड योगासन। लेकिन आजकल लोग वो शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, बकरासन, चक्रासन, मुर्गासन करते रहते हैं और उसको योगा 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 करते रहते हैं। वो योगा है नहीं, योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ, जो प्राय विस्मृत हो गया है, जो हमारी बहनें सिखाते हैं। आज दुनिया में साइंटिस्ट रियलाइज कर रहे हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। जब आपका मन से शुरू होता है तो पहले मन को ठीक करोगे कि पहले तन को ठीक करोगे? आप कितना भी देखने में हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी है, लेकिन मन सदा उदास है, मन सदा खराब है। कितने लोग सुसाइड कर देते हैं, तो क्या काम का है शरीर? तो मन ठीक होगा, मन चंगा तो सब कुछ ठीक। मन ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं, धन दौलत महल माड़ी गाड़ी मोटर सब फीका, बंगलों सब फीका लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे। मन ठीक होना चाहिए, लेकिन मन को कैसे ठीक करें दुनिया वालों के पास? वो टेम्पररी, कुछ कोई आपको कोई कुछ चुटकुला सुना दिया, कुछ टेम्पररी है। सदा के लिए मन सदा कैसे खुश रहे वो तो किसी के पास नहीं है। वो सदा जो खुद सदा है वो सदा के लिए कुछ दे सकता है। एक देखना, दुनिया में जितने भी नाम है किसी के नाम के सामने सदा नहीं लगा है। सदा राम, सदा कृष्ण, सदा विष्णु, सदा गणपति कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन किसके साथ नाम सदा है? सदा शिव है, सदा कल्याणकारी, सदा मंगलकारी। तो बाबा प्राप्ति भी हमको सदा कराते हैं, सदा के लिए। बाबा हमें 21 जन्म निरोगी बना देते हैं, ऐसी विधि बताते हैं जो 21 जन्म तक कोई बीमारी नहीं होगी। उससे बढ़कर प्राप्ति क्या हो सकती है? जीवन में ऋषि मुनि साधु संत भी रियलाइज करके गए थे कि जीवन में हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्दी कैसे रहें आज लोग भूल गए हैं। हम पढ़ाई पढ़ के बहुत अच्छे टेक्निकल मैन बन चुके हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई क्या, कितने सारे चीजें हैं दुनिया में। वो पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन हेल्थ कैसे ठीक रहे बहुत कम लोगों को ही ज्ञान है। और इतने कंफ्यूजन है कि बात मत पूछो, हजार बातें हजार। खास करके मैं डायबिटीज कह सकता हूँ, लोग मुझे भी बहुत कुछ एडवाइस देते हैं, जानते हैं, मुझे मिलेंगे कहेंगे डॉक्टर साहब पता है आपको डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हालांकि बताओ भाई, दूसरों को सुनाऊंगा, कहते खाली रात का भोजन छोड़ दो डायबिटीज खत्म। इज इट सो सिंपल? कहेंगे भिंडी को दो चीरा लगा दो, एक ग्लास पानी में डुबो के रखो, सवेरे पानी पी जाओ, डायबिटीज खत्म। मतलब कितने लोगों का खत्म कराए हो मुझे बताओ, थोड़ा मैं उनको पूछूंगा। कुछ भी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इतने कंफ्यूजन्स की बात मत पूछो। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो जीवन में सदा हेल्दी कैसे रहे। आप सभी हेल्दी रहना चाहते हैं? जो हेल्दी रहना नहीं चाहते हाथ उठाओ। अच्छा, सभी चाहते हैं, वेरी गुड। तो देखिए, हम हेल्थ शब्द को ही अगर संधि विच्छेद करेंगे, डिवाइड करेंगे, हेल्दी तो हिल दाए, हिल दाए, एच ई ए एल हिल टी एच वाई दाए, माना खुद को आप हेल्थ हिल करो। तो जो खुद को हीलिंग करना जानता है वो हेल्दी रहेगा। कैसे हीलिंग करेंगे लोगों को पता ही नहीं है। जब कोई भी मशीन खरीदो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसको मेंटेनेंस कैसे करें, क्या करें, सब कुछ मैनुअल में लिखा रहता है। लेकिन ये हमारा शरीर भी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, मशीन है इसका, लेकिन मैनुअल किसी के पास नहीं है, भगवान ने दिया नहीं किसी को। अगर मनुष्य के पास ये मैनुअल होता ना, भगवान को याद नहीं करते कहीं। जब बीमार होते हैं अक्सर करके सभी या तो भगवान को याद करेंगे, नहीं तो डॉक्टर को याद करेंगे। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुनिया में दो लोगों को कभी नाराज नहीं करना, एक है भगवान, दूसरा है डॉक्टर। अगर भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पास जाओगे, अगर डॉक्टर नाराज हो जाए तो इसलिए कभी नाराज नहीं करना है। तो मैं आपको आज तीन बातें सुनाऊंगा, मुख्य बातें जो सदा हेल्दी रहने के लिए बहुत सहज है, बाबा हमें सिखा के गए हैं, हम भूल गए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आज हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से हम बचपन से मैं सुन के आया हूं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है वही स्वास्थ्यवान बनता है, धनवान बनता है, बुद्धिमान भी बनता है। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या हो गया, माँ बाप ही उठते हैं 8 बजे तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? आप वंडर खाएंगे, अभी एक हमारा डॉक्टर कॉन्फ्रेंस था, यहाँ माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस था ज्ञान सरोवर में, 700 स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डीन प्रिंसिपल ऐसे लोग आए थे। सबको पूछा मैं कि जो 5 बजे से पहले उठते हैं हाथ उठाओ, वंडर खाएंगे एक भी हाथ नहीं उठाया, खाली जो हमारे बीके थे खाली वो उठाए, बाकी कोई नहीं उठा। तो डॉक्टर ही नहीं उठते हैं तो बाकी पेशेंट्स का क्या हाल होगा सोच लो। तो डॉक्टर खुद ही करेगा तो ही लोगों को बताएगा ना, खुद ही नहीं करता तो लोगों को कैसे बताएगा। तो बाबा ने हमें आज से 80 साल पहले नियम बना के बाबा गए हैं कि बच्चे 10 बजे सो जाओ 4 बजे उठो। आज साइंटिस्ट उसको प्रूफ कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो चुका है और साइंटिस्ट कह रहे हैं रात को 10 बजे जो सोता है जागता है, 10 बजे से 4 बजे के बीच में जागता है, उनको ही डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सब बीमारियां एक के पीछे एक। इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है, जो अनसंक्रामक बीमारियां हैं। दुनिया में 2 प्रकार की बीमारियां हैं, एक बीमारी जो एक दूसरे को फैलती है, दूसरी बीमारियां एक दूसरे को नहीं फैलती है। तो पहले जमाने में एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां बहुत थी, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, ये बीमारियां तो काफी हद तक कंट्रोल हो गया, हमारे पास वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स है। लेकिन आज घर घर में फैलने वाली बीमारियां है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आपको बुरा ना लगे मैं पूछूं, यहां कितने भाई बहनों को हाई ब्लड प्रेशर है, उठाओ जरा, देखो कहीं भी जाओ आपको 10% मिलेंगे, कहीं भी जाओ देखो यहां कितने। अच्छा डायबिटीज इनको है, हाथ उठाओ, देखिए जहां भी जाओ 10% मिलेगा आपको, जहां भी जाओ 100 लोगों को लोगे तो 10 तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा भी। मैं उल्लासनगर गया था थोड़े साल पहले, तो यहां से ट्रेन में बैठा, रात को 1:30 बजे पहुंचा उधर, 1:30 बजे पहुंचा रात को, तो टैक्सी में गया, सेंटर जा रहा था, तो मुझे वंडर लगा कि ये रात का 1:30 बजा है कि दिन का 1:30 बजा है, क्योंकि सारे दुकान बाजार खुला एकदम, इतने भीड़ भाड़, पानी पूरी भेल पूरी खा रहे हैं लोग, पूरा सारा चारों तरफ। मैं बोला रात का 1:30 की दिन का 1:30, वहां 3-4 बजे तक दुकान खुलते हैं लोग, फिर 4 बजे डिनर करके सोते हैं, 12 बजे उठते हैं, 1-2 बजे दुकान खुलते हैं। आप वहां एक भाई बोल रहे थे आंख बंद करके ऐसे ही पत्थर फेंक दो जिसके शरीर में लगेगा उसको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा। आज ऐसा हाल हो गया है कि बात मत पूछो, क्योंकि हमारी जीवन शैली बिल्कुल गड़बड़ है। भगवान ने दिन और रात बनाया किस लिए? रात भर जागने के लिए उल्लू जैसा और दिन में सोने के लिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा जो रात को 10 बजे से 4 बजे के बीच में जागते हैं उनको ही सारी बीमारियां हो रही है। आजकल जो कॉल सेंटर में जो यंग बच्चे जो रात को जॉब करते हैं, पैसा खूब मिलता है अमेरिका के साथ और कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उनका सब चलता है, मैं देखता हूं 25 साल भी उम्र नहीं हुआ है, डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, 25 साल भी उम्र नहीं हुआ है। तो ये बहुत एक गंभीर बात है, जब तक हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं कभी हेल्दी नहीं बन सकते। इसलिए रात को कुछ भी हो जाए 10 बजे सो जाओ। हमारी दादी माँ थी, परदादी, 10 करो बस कहती थी, कितने भी मीटिंग हो कुछ भी हो 10 करो बस, हमारे जगदीश से उठ के सीधा चले जाते, 10 माना चलो सो जाना अभी। तो एक नियम बनाना है और घर में इसको इम्प्लीमेंट करना है, माँ बाप को रोल मॉडल बनना है। अगर बचपन से बच्चों को नहीं सिखाएंगे ना, वो बड़े होके कभी नहीं सुनेंगे आपकी बात, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। मेरे पिताजी मुझे एकदम अर्ली मॉर्निंग उठा देते थे, खटिया में बैठ के हम प्रार्थना भजन करते थे, फिर थोड़ा सा भोर होता था तो चल नहाने, कुआं था घर में तो पानी एकदम कितनी भी ठंडी हो कुआं का पानी गर्म रहता है, वहां से बाल्टी में निकाल के नहलाते थे। मेरे ग्रैंडफादर तो 5 बजे के बाद हमारे घर में सो नहीं सकता है कोई, डंडा लेके गए तो जा दौड़ गया भाग,
और पहले तो जमाने में पहले तो खटिया फोल्ड कर दिया जाता था, बेडिंग रोल कर दिया, आजकल तो बेडरूम में लगा अपड़ा है 24 घंटा सोते रहो। तो पहला नियम है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यहां से ये पक्का करके जाइए। आजकल सबके पास मोबाइल है, ये है, रात को कब 12 बजे आता है 1 बजे आता है पता ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी अभी यही है लोगों को, सबसे बड़ी बीमारी मैं बता रहा हूं। पहले टीवी देखते थे, वो तो अभी सबके, पहले जमाने में बाबा के टाइम में बाबा कहते थे सिनेमा बच्चे सीन की माँ, वो देखने नहीं जाना, सीन की माँ है वो, सब पापों सीखना, पाप सीखना है तो सिनेमा घर में जाओ। लेकिन वो सिनेमा घर फिर घर घर में आ गया टीवी के रूप में, और टीवी भी आजकल वो भी नहीं, अभी जेब में, सीन की माँ जेब में है, जब से जियो आया मरो, जियो नहीं मरो, सबके जेब में है सिनेमा। आपको वंडर लगेगा, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज में देख रहा था, पढ़ रहा था, एक 11 साल का लड़का एक 6 साल की बच्ची को रेप कर दिया। आप सोचो तो सही, इससे शर्मनाक न्यूज और क्या हो सकता है। आजकल बड़ों को जो बातें पता नहीं है इसमें सब कुछ है, कोई लगाम नहीं, कुछ नहीं, ये सब गंध है बिल्कुल। तो जो इससे मुक्त नहीं होंगे वो कभी सो नहीं सकते, जल्दी उठेंगे भी नहीं कभी। तो मैं इसलिए कहता हूं ये विज्ञान के साधन अच्छा है, लेकिन दिन में 1 घंटा यूज करो, जाने दो। पहले जमाने में जब टेलीविजन ये नहीं था, हमारी ओम शांति बहन जी गुड मॉर्निंग, तो पहले जमाने में जब नहीं था मोबाइल, काम चलता था कि नहीं चलता था, चलता था। आपको मैं बताऊं एक बात, अभी नडियाद में हमारी बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है प्रभु शरणम, वहां मैं 50-50 फैमिली को बुलाया जिनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं, कितने सालों से कंट्रोल नहीं, ग्लूकोमीटर में हाई हाई दिखा रहा है, 350 फास्टिंग, 350 फास्टिंग, ऐसे लोगों को बुलाया 50 फैमिली, 3 ग्रुप किया 50-50, सबको बोला कि पहला दिन आते ही, वो 5 दिन रहने के लिए उधर शिविर कराया, तो पहला दिन आते ही बोला कि मोबाइल आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 5 दिन तक मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल फास्टिंग करना पड़ेगा। आप भाई बहनों में से कितने लोग मोबाइल के बिना रह सकते हैं, हाथ उठाए, सच, बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन। नहीं नहीं, मोबाइल फास्टिंग, देखा, आप इस उम्र में भी आप एडिक्टेड हो तो बच्चों का क्या हाल है। आप, मैं बता रहा हूं, यंगस्टर्स तो ऐसे एडिक्ट हो चुके हैं, अगर मोबाइल छीन लोगे ना, जैसे बिना पानी मछली जैसे तड़पता है, ऐसा हाल हो जाएगा उनका। आप एक दिन किसी का मोबाइल छीन लो, देखना क्या हाल होगा, पागल हो जाएंगे, पूरा पागल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी एक्चुअली इसके जो रेडिएशन है, जो बहुत एकदम मन को विकृत करने का एक बहुत बड़ी माया का साधन है, इससे जो मुक्त नहीं हुआ ना, वो कभी भी अंतमति सोगति होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हालत होगा लास्ट में मोबाइल ही याद आएगा, बाबा तो याद ही नहीं आएंगे। तो मोबाइल यूज करो, 1 घंटा रख दो दूर, फिर बाद में 1 घंटा देखने, उसमें किसका मिस कॉल है, किसका मैसेज है, बात कर लो, छोड़ दो, जाने दो। रात को मोबाइल पकड़ना ही नहीं है, रात को मोबाइल पकड़ा तो कब 12 बजेगा 1 बजेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो रात को 10 बजे सोएगा वही तो 4 बजे उठ पाएगा, नहीं तो कैसे उठेगा। तो अभी एक यंग एक भाई ज्ञान में चलने लगे, तो मुझे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं सवेरे उठ ही नहीं पाता हूं, क्या करूं। मैं बोला कि थोड़ा जल्दी सोना प्रयास करो। तो मैं जल्दी सोता हूं, तो रात को थोड़ा हल्का भोजन करो, कहते हैं वो भी करता हूं। मैं बोला रात को कुछ बाबा की अच्छी गीत सुनो, लेकिन वो भी करता हूं। मतलब रात को एक्सरसाइज अच्छी तरह से करो, शाम को एक्सरसाइज करो तो रात को अच्छी तरह से नींद आएगी, फिर फ्रेश हो जाए, तो वो भी करता हूं। मतलब अलार्म रखो, कहता वो भी करता हूं, फिर भी नहीं उठ पाता हूं। मतलब क्यों नहीं उठ पाते, बोला कि मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं खटिया में 9 बजे जाता हूं, इस करवट उस करवट इस करवट, 10 बजे आता है, 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, 2 बजे आता है, 3 बजे, अभी मोबाइल में मेरे बाबा का अमृत वेला का गीत भी फीड कर दिया हूँ अलराम के लिए 3:30 बजे, यहाँ बजता है ना 3:30 बजे, सुनते हैं आप सभी, तो गीत भी फीड कर दिया हूँ। सवेरे सवेरे 3:30 बजे गीत बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले सो जा सो जा, तो मैं सो जाता हूँ बोला। तो कहने का मतलब है बहुत लोग रात को नींद नहीं आती, ये बहुत बड़ी बीमारी है। नींद नहीं आना भी बीमारी है, स्वास्थ्य खराब होगा। आज साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे सो जाओ 4 बजे उठो तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, साइंटिस्ट कह रहे हैं। जो रात को जागता है उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मोटापा, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां दोगुना, नॉर्मल लोगों के हिसाब से दोगुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों हम अपना लाइफस्टाइल को, सबसे पहला परिवर्तन अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो एक नियम यहां से पक्का करके जाना, मैक्सिमम 10:30 बजे तक सो ही जाना। आप वहां देखना हिस्ट्री हॉल के सामने हमारी दिनचर्या लिखा हुआ है, कितने बजे सोना है कितने बजे उठना। आप जल्दी उठो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी उठो लेकिन सोना जल्दी है। जल्दी उठने से बाबा भी देखो 2 बजे उठ जाते थे, मम्मा हमारी 2:30 बजे उठ जाती थी, बहुत भाई बहन जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने से नुकसान नहीं होगा, लेट तक सोएंगे तो नुकसान होगा। 10-10:30 बजे तक सो के आप अगर 2-3 बजे भी उठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें फ्रेश माइंड में बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन करो एकदम। बाबा कहते हैं 5 मिनट भी अगर अच्छी तरह से मेडिटेशन करो तो 5 घंटा नींद की बराबर है। तो साउंड स्लीप इज ए मस्ट। जो कम सोता है या ज्यादा सोता है उसको सारी बीमारियां हो रही है। बोथ एक्सेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप दे कॉज हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो इसलिए ज्यादा भी सोना नहीं, कम भी सोना नहीं। कितना घंटा सोना है? 4-5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा सफिशियंट है। मैं जगदीश भाई को कितने बार पूछा था कि भाई साहब कितना घंटा सोना चाहिए, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट किया मैं, नहीं सो के भी देखा, 1 घंटा सो के देखा, 2 घंटा सो के देखा, खूब सो के देखा। मैं बोला कि कैसे क्या ठीक होगा। जगदीश भाई को पूछा तो कहते हैं कि मेरा अनुभव है हमें 5 घंटा नींद करनी चाहिए तो आपको फ्रेश लगेगा। क्योंकि हम कोई गुफा में जाके, कोई सन्यासी जैसे जाके तो नहीं करना है, माला नहीं फिरना है। हम पब्लिक इंटरेक्शन में आते हैं, आप थके थके नजर आते हो, चेहरे में ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल सुस्ती करते हो, किसी बात करते करते उबासी खाते हो, लोग तो चलते चलते भी सो जाते हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना। इसलिए जगदीश भाई कहते थे 5 घंटा नींद चाहिए। अगर आप 10-10:30 बजे सो जाते हो तो 3:30 बजे ऑटोमेटिक नींद खुलेगा, एकदम फ्रेश। तो पहला नियम ये परिवर्तन करना है, ठीक है। जो रोज अमृत वाला एक दिन भी मिस नहीं होता है, जो भाई बहने रोज उठते हैं, हाथ उठाओ। हाँ कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक यहां से पक्का परिवर्तन होने के लिए, बाबा का घर परिवर्तन भूमि है, ये वरदान भूमि है। आप बाबा से वरदान लो, जो आपके अंदर कमी कमजोरी, मेरा अनुभव है आपको मान लीजिए नींद आती है ज्यादा, तो बाबा से वरदान लो, बच्चे निद्राजीत हो, बाबा को देखते रहो और बाबा ऐसे जैसे अपने वरदानी हाथ से बाबा कह रहे बच्चे वरदान, निद्राजीत हो, बाबा मुझे वरदान दे रहे, बाबा की आंखों को देखो, बाबा से वरदान लो। आपको गुस्सा आता है, बाबा से वरदान लो, बच्चे क्रोध मुक्त भव। देखो ऑटोमेटिकली रोज रोज वरदान लेना है, देखता हूं कैसे आपको नींद आएगी। आप सवेरे उठते ही बैठो और बाबा से वरदान लो, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बच्चे निद्राजीत भव, बाबा वरदान दे रहे, तो नींद आएगी। आप बैठेंगे, आप बैठ के बाबा से वरदान ले रहे हो, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर 21 बार वरदान लो। आप बैठ के मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, ऐसा होगा क्या? होगा, आपके अंदर स्मृति आएगी, बाबा को देखो, बाबा वरदान दे रहे, देखना ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन में एकदम साकार हो जाएगा। तो बाबा से वरदान लेके ये नियम पक्का करना है, ठीक है। नींद को पहले जीतना है, जो निद्राजीत बनेगा। आज बाबा ने क्या वरदान दिया जानते हो? प्रकृति जीत भव। प्रकृति 5 तत्वों को कहा जाता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडक हो, कुछ भी हो, हमें नींद को त्याग करना है, उठना है। हमारे नियम में पक्के हम। बाबा सारे जीवन काल में एक दिन भी मिस नहीं किए, मम्मा सारे जीवन काल में एक दिन भी मिस नहीं किए। तो सबसे पहला नियम बनाना है सवेरे, तो प्रकृति जीत, शरीर की बीमारी, ये शरीर भी प्रकृति के है, पांच तत्व के, शारीरिक बीमारी भी हमको अपसेट ना कर सके, तो हमारे नियम पक्का। अभी हमारी दादी जानकी की बात मैं सुनाता हूँ। एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो 4 बजे मैं गुड मॉर्निंग करने के लिए गया दादी के पास। दादी पूरा सोफा सेट में बैठ के बाबा को याद कर रही है। तो मैं दादी को बोला, दादी आपका तबीयत खराब है तो आप सोफे में बैठे हो। तो हूँ, मैं बाबा की सजनी हूँ, मैं खटिया में योग करूंगी। 90 साल 100 साल में उम्र देखो, मैं बाबा की सजनी हूँ, कितना नशा। तो कुछ भी हो जाए, हमें सवेरे उठ के बाबा को याद करना है। देखो फिर बाबा सदा के लिए निरोगी भाव का वरदान दे देंगे। बाबा वैद्यनाथ है, सबसे सुप्रीम सर्जन है। पहले जमाने में डॉक्टर कौन बोलता था, वैद्य कहते थे। सभी वैद्यों का नाथ, वही सदा निरोगी बनाने आए हैं। तो पहला नियम यहां से पक्का करके जाइए कि उठना ही है, भले बाद में फिर सो जाओ लेकिन उठना ही है। ठीक है, बाद में फिर सो जाओ, आधा घंटा एक घंटा बाबा को याद करके भले सो जाओ, फिर आपको फ्रेश नहीं लगता है तो, लेकिन उठना ही है, एक नियम बनाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि हट से पूरा फिर नहीं सोना है, नहीं ऐसा नहीं, भले सो जाओ लेकिन 4 बजे उठना ही है। 4 से 4:45 बाबा ने वरदान दिया है, जानते हो बाबा के महावाक्य सुन रहे भाई जी, थोड़ा हिला दो। सुनिए बाबा ने क्या कहा है जानते हैं? बाबा ने कहा है, बच्चे तुम सिर्फ अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम खाली अमृत वेला उठो 4 से 4:45 पौना घंटा, तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो और इससे सहज और क्या है जीवन में, और क्या सहज जी। क्या करने का? फिर से सोने का। हाँ, जाके नहा लो, फटाफट नहा लो, फटाफट ये करो, एक सावर ले लो, छोटा सा सावर ले लो, फिर आके 10-15 मिनट लगेगा मैक्सिमम। हाँ, जाके आके बैठना है। तो एक नियम बनाना। बाबा ने तो ये भी कहा है कि बच्चे, जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी आदि कर, जो बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे राजा बनेंगे, बाबा ने ये भी कहा है। तो उठते ही पहले नहा लेने से ना सुस्ती भाग जाती है। अब नहीं नहाओगे तो वही कपड़े पहन के बैठोगे, बाबा बाबा बाबा। फिर पहला काम उठते ही एक सवार ले लो, कपड़े चेंज कर दो, फ्रेश कपड़े में फिर बैठो, देखो कितना मजा आता है। पहला काम मैं तो डे वन से उठते ही मेरा पहला काम बाथरूम जाके नहा लूंगा। हाँ। नहीं, इतना छोटा स्नान करना, बाद में अच्छी तरह से स्नान करना। पहले 3:30 बजे बाबा ने क्यों नियम रखा, हम 3:30 बजे उठ के पहले आधे घंटे में तैयार हो जाओ, 4 बजे से आधा घंटा भी बैठो, देखो फिर बाबा। कपड़े चेंज कर दो, ब्रश कर लो, मुंह हाथ धुले कर दो, नहीं नहाते तो स्पंजिंग कर दो और जाके बैठो, तो सुस्ती भाग जाएगी। कपड़े चेंज करना है, नहा लो तो पूरा फ्रेश हो जाओगे एकदम। तो पहला परिवर्तन करना है, सवेरे उठ के मुझे बाबा को याद करना है, जल्दी उठना है, देखो फिर हेल्दी रहेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा वरदान देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा परिवर्तन है, बाबा कहते सदा निरोगी रहने के लिए बच्चे 3 चीजें करो। रोज क्या खाओ? पनीर की सब्जी। बाबा कहते हैं रोज खुशी रूपी खुराक खाओ, खुश रहो। और कौन सा एक्सरसाइज करो? याद की यात्रा, याद की यात्रा करो। मेरा भाई मिलिट्री में था, एक दिन मेरे पास आया, तो मैं बोला कि सवेरे दौड़ेंगे? बोला कि हाँ, वो तो दौड़ते हैं सवेरे सवेरे। तो बोला कि हाँ, लेकिन मुझे बोला कितने बजे? तो बोला 4 बजे। इतना जल्दी भी क्यों? तो नहीं, हम तो 4 बजे दौड़ते हैं। लेकिन अच्छा, तुम्हारे साथ दौड़ना है, दौड़ोगे? लेकिन 4 बजे थोड़ा जल्दी, ठीक है। मैं बोला कि ऐसे नहीं दौड़ना है, हम तो ऊपर दौड़ते हैं। तो बोला वो कैसे होता है? तो बाबा को याद करो। तीसरी बात, बाबा कहते हड्डी हड्डी यज्ञ की सेवा करो। सदा खुश रहने के लिए बाबा ने ये तीन वरदान दिया है, सदा खुशी रूपी खुराक खाओ, सदा याद की यात्रा में रहो, सदा हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा करो। तो सदा निरोगी रहेंगे। आप बाबा की यज्ञ सेवा करोगे तो बाबा आपको हेल्दी नहीं रखेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले 12 साल में, ऐसे तो पहले यहां जब आया मैं पहले 14 साल तक माउंट आबू छोड़ के कहीं नहीं गया था, और उस समय इंद्राबेन थी कि नहीं पता नहीं, मैं डेली 2 बजे सार्फ पूरा चल के आता था, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल से चल के आता था, कितने भी आंधी तूफान बारिश यहां से मधुबन निवासी नहीं आते थे, मैं बाबा को जाके गुड मॉर्निंग बाबा मैं आ गया कहता था। तो 14 साल में मैं एक दिन नहीं मिस किया, लेकिन उस समय तो एक दिन छुट्टी नहीं लिया था, लेकिन अभी भी मैं 12 साल हो गया डायबिटीज जब से शुरू किया, मैं एक संडे भी खा पी के कहीं नहीं सोया हूं। एवरी सैटरडे संडे कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है, इतने ट्रैवलिंग करता हूं, इतना सारा कहां खाना पीना सोना कोई ठीक ठिकाना नहीं, यहां भी आके इतना पेशेंट, फिर जाता हूं भागता हूं, फिर वहां हजारों पेशेंट, लेकिन मुझे बुखार क्या है अभी तक पता नहीं। मैं सच बता रहा हूं, बाबा मुझे कितना वो बंधा हुआ है आपको ठीक रखने के लिए। मैं कहता हूं बाबा ये जीवन आपके लिए, जैसे चलो आप करावा ना हारो, मैं तो कराना हारू, जो कराना करो। मैं बाबा को डेली आके कहता था बाबा इतनी सेवा कराना, ऐसा नहीं कहना कि आपने सेवा नहीं की, लास्ट में नहीं बोलना सेवा नहीं, मैं तैयार हूं, जो कराना है करा लो सेवा। तो बाबा छप्पर फाड़ के सेवा दे रहे, करो जितने करो। तो जीवन में यज्ञ सेवा करेंगे तो बाबा आपको हेल्दी रखेंगे, निरोगी। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई कैसे, किसी भी रीति से, मुझे यज्ञ सेवा करनी है, हड्डी हड्डी करनी है, फिर देखो फिर बाबा आपको वरदान देंगे, क्यों नहीं देंगे, सदा ठीक रहेंगे। तो जीवन में सवेरे उठा, बाबा को याद किया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। शरीर के लिए बाबा भी खुद भी देखो पैदल कराते थे, मुरली के बाद जाके जाओ जाके घूम के आओ, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग पहाड़ी चढ़ाते थे, बैडमिंटन, बाबा भी खुद फिट थे, 93 उम्र तक बाबा को कोई डंडा पकड़ना नहीं पड़ा, चश्मा पहनना नहीं पड़ा, बाबा किसी का सहारा नहीं लिए, फिट पूरा 6 फुट हाइट था बिल्कुल। तो जीवन में हमें भी कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर कभी ठीक नहीं रहेगा। हल्का फुल्का करना करेंगे अभी थोड़ा सा, सभी खड़े हो जाए, सुस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने कहां गया भाई हमारा, अच्छा चलो मेरे पास है, सभी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, देखना अभी फ्रेश हो जाएंगे, बहुत सुंदर, मैं देख रहा था सुस्ती आ रही है, रात को लेट सोए होंगे, कोई बात नहीं, अभी एक सुंदर गीत बजाऊंगा, देखना बहुत मजा आएगा आपको, बहुत एक सुंदर गीत बजाऊंगा, मेरे साथ करना, बहुत इजी है, आपको मजा आएगा देखना, बाबा के गीत के साथ खड़े होके वहां ही होगा। Thank you. वेरी गुड,
मेरे संग संग
लास्ट में। हाँ चलेगा। आया मजा सभी को, फ्रेश हो गए? आप इतना भी करो, देखना आपको कितना मजा आएगा। मैं आपके उम्र से बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं सिखा रहा हूँ, अभी भी सांस फूल गया ना। अगर इतना भी करोगे, एक गीत भी, देखना हो जाएगी। खाली रोज आपको 15 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे ना, एकदम फिट रहेंगे। हिलना नहीं, डुलना नहीं। अभी साइंटिस्ट कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हैजर्डस, लंबे समय तक बैठे रहने से सारी बीमारियां होती है। जो हफ्ते में 23 घंटा से ज्यादा बैठता है उनको हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो रहा है। मैंने दिन में 3.5 घंटा से ज्यादा नहीं बैठना है। जो 3.5 घंटा से बैठते हैं तो कंटिन्यूस नहीं बैठो, 1 घंटे में उठो, जाके घूम के आ जाओ, फिर बैठो, फिर घूम के आओ, फिर बैठ जाओ। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे तो ओल्ड एज तक भी, बाबा लास्ट 93 उम्र तक बाबा अगर फिट थे तो हम तो 93 तो नहीं हुए। यहाँ कोई 93 है? 90 प्लस है, देखो। तो बाबा कितना एकदम फिट कैसे थे देखो। तो बाबा क्योंकि एक्सरसाइज करते थे। अभी आप अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे, आप, मैं आपको मेरा जीवन का अनुभव बता रहा हूं। आप हमारे धवन भाई को पूछिए, शर्मा भाई को पूछिए, जब से मुझे देखते हैं मेरा वेट बढ़ा है भाई जी? मैं 30 साल में मेरा वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ा, मैं जैसा था। बहुत अच्छा। तो मैं एक्चुअली मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं ये सबको सिखाता भी करता भी हूं, और इसलिए मेरा वेट पूरा एकदम मेंटेन करके रखा हूं, और जितना हाइट के अनुसार जितना वेट होना चाहिए एग्जैक्टली उतना है। इसलिए मैं बता रहा, मुझे बुखार तक भी क्या है पता नहीं मुझे। मेरा वेट 84 किलो, आई एम 83 84 सेंटीमीटर है, 6 फीट 2 इंचेस। तो इसलिए मेरा वेट जितना होना चाहिए उतना ही है। हाँ, सेंटीमीटर, आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है उसमें 100 माइनस कर दो, जितना रहा उतना किलो होना चाहिए। हाइट अगर आपका 5 फीट है, 5 फीट को 150 सेंटीमीटर, 100 माइनस करो तो 50 किलो होना चाहिए। लेकिन बहनों को तो कितना हो गया है, सब करो 62 किलो, 50 और 15 65। तो बहनों को तो 105 माइनस करना चाहिए, लेकिन आपको 5 किलो कंसेशन दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए 65 किलो होना चाहिए, और 10 किलो ज्यादा बहन जी ठीक होगी। जितना हाइट सेंटीमीटर में है उसमें से 100 माइनस कर दो, वो भाइयों के लिए, बहनों के लिए 105 माइनस करना चाहिए, उतना किलो होना चाहिए। सुनिए सुनिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनिए। अगर बॉडी वेट 10 किलो वेट बढ़ जाता है तो आपको हार्ट को एक दिन में 1000 लीटर खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, 1000 लीटर। तो हार्ट का क्या हाल होगा? इसलिए थोड़ा सा चलने के बाद सीढ़ी चढ़, तो बहुत 10 किलो खाली वेट घट जाता है, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। एक भाई 2 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में आया था, उसको डायबिटीज, इतनी दवाई खानी पड़ती थी, परेशान हो गया, बोला कि क्या करूं, 95 किलो था। उसको बोला कि तुम वजन घटा दोगे ना तुम्हारा डायबिटीज खत्म हो जाएगा। 3 महीने में, भाई साहब मैं बता रहा हूं, 3 महीने में 25 किलोमीटर डेली भागा दौड़ा, 3 महीने में 60 किलो हो गया। अभी सारी गोलियां बंद, सब कुछ बंद, बोला कि देखो मेरा सब कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, सब सब ठीक हो गया, लेकिन लगन से किया, दृढ़ता के साथ एकदम बिल्कुल। तो आप खाली वेट ठीक कर दो, देखना 1000 बीमारियां ठीक नहीं हो जाएगी। तो मैं बता दूंगा आपको, वेट बढ़ा माना बीपी आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, थायराइड आएगा, शुगर आएगा, हार्ट की बीमारी आएगी, आपका पित्त की थैली में पथरी होगी, कमर दर्द होगा, घुटने में एकदम देखना सारा शरीर का वजन ढो ढो के घुटना गिर जाएगा। फिर हमारे हॉस्पिटल में आते ही मैं देखता हूँ, दूर से पहचान जाता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में हर महीना 15 लोगों का घुटना चेंज होता है, 2.5 लाख एक का।
तो 15 लोगों का होता है, 15-20 लोगों का, इतना पैसा खर्च करो करो। और दूर से मैं वो एंट्री, हॉस्पिटल में एंट्री होते ही पता चल जाता मुझे किस ले आ रहे हैं। कैसे कैसे, जब घुटना घिस जाता है ना, लोग ऐसे चलते हैं, सारा शरीर हिलता है लेकिन घुटना नहीं हिलेगा। तो एक तो घुटना घिसा हो, इतना पैसा खर्च करो, और क्या होगा, जिसको मोटे हो जाने से फिर खर्राटा आता है, आप देखना मोटे हो जाएंगे, सोएंगे ना, और फिर ये जीभ पीछे चला जाता है, फिर जीभ पीछे चला जाता है तो सांस की नली, सांस लेते समय खर्राटा आएगा, सारे परिवार पूरा परेशान। और ज्यादा मोटे हो जाते ना, फिर वो जीभ बहुत पीछे चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पीछे चला जाता है, तो सांस की नली पूरा बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। ऐसे लोगों को फिर हार्ट अटैक होता है ज्यादा। क्या होगा देखना, सो जाएंगे ऐसे, फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद होने के बाद थोड़े समय का फिर सो जाएंगे, फिर बंद हो जाएगा, फिर ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसको स्लीप एपनिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। बहुत डेंजरस है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, सुनिए। उनको करवट में सोने के लिए कहना, लेकिन लेकिन वो करवट सोते सोते कब सीधा हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो बहुत सिंपल बात है, सुनिए क्या करना है। आपके जो दुपट्टा होते हैं, कि मफलर होता है, टावल होता है, यहाँ मफलर जैसा पूरा बांधो, 3-4 राउंड लगा के बांधो और सो जाओ, जी पीछे नहीं जाएगा। वेरी सिंपल, आप करके देखो, खर्राटा भी नहीं आएगा, बांध के देखो। मफलर को जैसे मफलर बांधते हैं ना सर्दी के मौसम में, कैसे बांधते हो, अपने दुपट्टा को बांधो ऐसे, कोई टावल को बांधो ऐसे, 3-4 राउंड करके ऐसे बांधो, तो मुंह ऐसा क्या होता है, सो जाते तो ढीला हो जाता, तो फिर जीभ चला जाता पीछे, जब बंद हो जाएगा तो नहीं जाएगा जीभ पीछे। वेरी सिंपल ये है, ठीक। नहीं नहीं, सीधे सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो डेली सवेरे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बाबा को याद करना, बाबा से वरदान लेना, बच्चे सदा निरोगी भव, बाबा से हीलिंग कराना। जब बैठते हो जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती है, लेकिन जिसके पास एक लेंस है क्या होता है, वो सौर शक्ति एकाग्र होकर नीचे कुछ रखते हो तो जल जाता है ना। नहीं, ऐसे ही बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी असीम कृपा चारों तरफ फैल रही है, करुणा की किरणें बिखर रही है, लेकिन जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की शक्ति को कैच करते हैं, शरीर हीलिंग हो जाती है, आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाता है। तो अनुभव करो, बाबा एकदम सामने हैं, अगर चित्र है तो बाबा को देखते रहो, अनुभव करो कि बाबा की किरणें आ रही है, शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझे आत्मा पर पड़ रही है, और मेरे सारे पूरा शरीर के अंग अंग में बाबा की किरणें फैल रही है, एकदम शक्ति की किरणें फैल रही है, मेरी सारी बॉडी हीलिंग हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा थायराइड, मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं निरोगी होता जा रहा हूं, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा निरोगी भाव, बच्चे सदा निरोगी बाबा से लो। इसको योग का प्रयोग कहा जाता है। बाबा के 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, जानते हो कौन कौन? एक है सहयोगी, जो बाबा की सेवा में सहयोग देते हैं, तन से मन से धन से सहयोगी। दूसरे होते हैं योगी, जो बाबा को योग याद भी करते हैं, और जो योगी होता है वो सहयोगी होता ही है। तीसरे होते हैं प्रयोगी, अर्थात बाबा से जो शक्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां लेते हैं उसको प्रयोग करते हैं जीवन में, दूसरों के जीवन में भी सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बाबा की शक्ति को अपने ऊपर प्रयोग करो, अपने बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने संस्कार को बदलने के लिए, अपनी बुरी आदतों को चेंज करने के लिए चेंज करो। तो बाबा से याद करने के बाद एक्सरसाइज, आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है, सारे ज्वाइंट को एक बार घुमा देना है, सब ज्वाइंट को एक बार मोबिलाइज कर देना, तो स्टिफनेस नहीं आएगा, नहीं तो ओल्ड एज में थोड़ा स्टिफनेस हो जाता है। और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चाहिए, आपका उम्र में क्या होगा, ये सारा ऐसे लुढ़क जाएंगे सब, तो मसल आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चाहिए। वेट लिफ्टिंग नहीं, इस उम्र में वेट लिफ्टिंग नहीं होता है, नहीं तो एकदम कम उम्र में कम हो सकता है, नहीं तो सिंपल एक्सरसाइज है, पुशअप पुलअप,
सिट अप, तीन एक्सरसाइज। क्या करना है, एक दीवार के सहारे में खड़े रहना है, दीवार को ऐसे पकड़ के ऐसा पुश करना, पुश अप। दीवार में हो गया आपको इजी, फिर एक सोफा सेट ऊपर ऐसा थोड़ा सा ऊंचा टेबल को कि कुछ पकड़ के ऐसे पुश अप, पुश अप। वेरी सिंपल है। और थोड़ा सा कहीं है तो लटक सकते हो तो अच्छी बात है। और 10 बार बैठना है सिट अप, ऐसा पांव दूर दूर रख दो, बैठ जाओ स्क्वाट, 10 बार बैठो, बैठक उठक करो। तो इतना भी करोगे तो आपको स्विमिंग करना है, स्विमिंग जिसको आता है करो, बहुत अच्छा, लेकिन वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं है। कुछ उम्र के बाद सारा ऐसा लुढ़क जाता है, सब मसल्स फ्लैबी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर वेट लेके कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, जिसको आता है करो, बहुत अच्छा, जिसको आता है करो, नहीं तो फिर इस जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा और मुसीबत है। जिसको नहीं आता है सिंपल है, पुशअप करो, दीवार को पकड़ के पुश करो सीधा, फिर पुश करो सीधा, दीवार को पकड़ के थोड़ा दूर से पांव रखो, दीवार को पकड़ो ऐसे पुश करो, तो देखना उसमें आपका हाथ पांव स्ट्रांग होगा, बिल्कुल आपको ये नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भोजन। जब तक आप भोजन ठीक नहीं करोगे आप हेल्दी नहीं बन सकते हो, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो खाते हो अपने शरीर में जो जाता है, हमारे शरीर में जो जो आवश्यक चीजें हैं अगर हम नहीं डालते हैं तो शरीर कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा। आप गाड़ी खरीदे हो, बहुत अच्छी मर्सिडीज खरीदे हो कि और कुछ BMW खरीदे हो, लेकिन उसमें कभी मूंगफली का तेल डाल रहे हो, कभी नारियल तेल डाल रहे हो, क्या होगा। तो शरीर भी ऐसा ही है, शरीर को भी हमें क्या डालना है जानना जरूरी है। बाबा ने हमें कितने साल पहले बाबा ने कहा है, बच्चे बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, वो क्या है हमें समझना जरूरी है। आप भोजन को समझ गए ना, देखना आपको 99% बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ जर्नल पढ़ रहा था, उसमें आज की बीमारियों की लिस्ट और उसका कारण, मुख्य कारण लिखा था, पूरा टेबुलेशन करके पढ़ रहा था। सबसे टॉप कॉज था डाइट, हमारा भोजन आजकल सबका गड़बड़ है, देखो क्या क्या खाते हैं लोग, छी छी छी। बाबा ने हमें कब से बचाया है ये सब बातों से, हमें बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी कभी आउटिंग बिल्कुल नहीं, कभी कभी थोड़ा सा सोशलाइजेशन के लिए करना नहीं, क्योंकि खतरा है शरीर के लिए। क्योंकि बाबा ने ये 80 साल पहले बाबा कह के गए हैं। मैं आपको बताऊं, अभी एक भाई था, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है, अभी छोड़ के चला गया, वो जा रहा था ट्रेन में जा रहा था, रास्ते में ऐसे फ्रेंडशिप हो जाती है, किसी भाई बोला कि पियो, बोतल दिया पानी पीने के लिए, पी लिया, 10 घंटा तक बेहोश हो गया, सोया रहा, उसकी सारी लैपटॉप वैपटॉप सब 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 खाली खाली, जो कपड़ा पहना है 10 घंटे के बाद दिखता है तो कहां जाके उठ रहा है। आजकल कोई भरोसा नहीं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारे देश का गायन है, दाल रोटी खाओ, सभी नहीं बोल रहे हैं, दाल रोटी खाओ। कभी कभी ब्रह्मा भोजन में बनता है, बहन जी बनाती है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बाजार की चीजें नहीं खानी है, ये पक्का। जब भी खाने की इच्छा है बहन जी को बोलना, लेकिन बाजार की चीजें नहीं खानी, मैं सच बता रहा हूं, बाजार की चीजें कुछ भी नहीं खाना। बाजार की चीजें खाएंगे ना, कोई सेफ्टी नहीं, कोई गारंटी नहीं। आजकल कितना डेंजरस, मैं बताता हूं, अभी न्यूज है, न्यूज क्या, मेरे पेशेंट आए थे, एक बैंक मैनेजर है, सीनियर बैंक मैनेजर थे, लास्ट वीक में आए थे, वो बता रहे थे उनका फ्रेंड साउथ इंडियन, वो कहीं ट्रैवल्स में ट्रैवल कर रहा था, आजकल स्लीपर बसेस है, सोया था अकेला, तो रास्ते में आपको पिलाएंगे नहीं कुछ नहीं, लेकिन सूंघा देते हैं, आप सोए हो गहरी नींद में, सोए हो ऐसे रख देंगे ऊपर तो सूंघेंगे ना, आपको तो असर होगा। तो फिर उसको रास्ते में, नेशनल हाईवे में रास्ते में, उसको ये ड्रंकार्ड है, शराब पिया है कह के उसको लेके बाहर छोड़ दिए, भागे। फॉर्चुनेटली साउथ इंडियन बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी मिसेज उनकी जो कहां ट्रैवल कर रहा है टिकट विकेट का सब भेजते हैं व्हाट्सएप में, आजकल तो भेज देते हैं, तो वो ट्रेस करके फिर उसको लेके आईसीयू में दाखिल करके 2 दिन के बाद उसका होश आया कि मैं आईसीयू में पड़ा हूं, उसके सारे गायब, सारे सब कुछ गायब। आजकल कोई भरोसा नहीं, मैं बता रहा हूं दुनिया, इसलिए कभी भी नहीं। और मैं तो फ्लाइट में भी ट्रैवल करते समय मैं बैठा था, वो बिस्किट देते हैं, कुछ देते हैं खाने पीने की, एक भाई बिस्किट खाया तो कैसे, हम लोग प्याज लहसुन तो खाते नहीं है तो कैसे बदबू आया, मैं सोचा ये क्या खा रहा है, बिस्किट खा रहे हैं, ऐसे क्यों बदवा रहा है? तो जो रैपर था वो रैपर देखा, उसमें लिखा है गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर। आजकल बाजार की कुछ भी चीज, बिस्किट भी सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसलिए कभी भी कोई भी चीजें बाजार करें, जो इच्छा है घर में बनाए खाओ, नहीं होता तो बहन जी को बोलो बना के देंगे, खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, बाजार के नहीं, जो मर्जी खाओ। 56 प्रकार बाबा भी खिलाते थे इधर, मैं देखा हूं। और मैं दादियों को, हमारे जगदीश भाई को पूछा करता था, तो जगदीश भाई को कहता था कि भाई साहब ये यहाँ जो खाना बनता है ये तो पूरा रिच है, बिल्कुल एकदम, ये तो राजसिक भोजन है, ये योगी अनुकूल सात्विक भोजन तो नहीं है। तो भाई साहब ने क्या कहा जानते हो? जगदीश भाई ने कहा, देखो बाबा का घर कोई साधु संन्यासियों का घर थोड़ी है, रुखा सुखा। बाबा का घर आश्रम खाली नहीं है, यहाँ बाबा के बच्चे कोई 2 साल 4 साल में भी आते हैं, कितने मेहमान आते हैं। हम घर में भले सुखी रोटी खाएं, जो भी खाएं, कोई मेहमान आते तो खातरी तो करना पड़ता है, तो बाबा सबको खातरी करते हैं। लेकिन आपको किसने बोला ये सब डेली समोसा खाने के लिए, डेली गुलाब जामुन खाने के लिए आपको किसने बोला? आपको पता है ना सात्विक भोजन क्या है, खाओ ना, आपको क्या, सब तो बनता है बाबा के घर में। आप ऑनेस्टली बता रहा हूं, मधुबन में क्या कमी है? नलका खोलो चाय, नलका खोलो दूध, जितना पीना पी लो। अगर हम खाते सारा तो कब से फुटबॉल बन जाते। लेकिन नहीं, हमें क्या खाना है, कितना खाना, समझ है। तो मैं आपको एक सिंपल टिप्स बताता हूं, सुनिए। 5 बार खाना है, कभी भी पूरा यहां तक नहीं खाना है। लोग खा जाते हैं और ही करेंगे गैस ऐसा करके, तो पूरा अखंड भोजन कहते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, भगवान क्या कहते हैं, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। अभी मिला तो एकदम खा गया इतना तक, फिर 3 दिन तक उपवास करते रहो, नहीं। अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। आप छुट्टी है तो 24 घंटा सोते रहो, और कुछ शादी है कुछ है तो पूरा दिन रात जागते रहो। आपको शायद पता नहीं होगा, लास्ट ईयर एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आया था, हमारा इंडिया का एक यंगेस्ट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मल्टीनेशनल कंपनी, 43 ईयर्स, दो छोटे छोटे बच्चे, हार्ट अटैक हो गया, कोई बचा नहीं सके, मासिव हार्ट अटैक मर गया। तो उसको जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला क्यों हार्ट अटैक हुआ इतने कम उम्र में, पता चला कंपनी का इतना प्रेशर था कि वो 3 दिन 3 रात सोया नहीं, खाली काम करता रहा, हार्ट अटैक हो गया। क्या काम का है, करोड़ों रुपया। तो इसलिए एक बैलेंस लाइफ, तो 5 बार खाना है, कम कम खाओ 5 बार। सवेरे नाश्ता 8-9 बजे तक, रात को डिनर 8-9 बजे तक, दोपहर को 1-2 बजे तक लंच, तीन बार तो मेजर मील तो है ही हमारी, नाश्ता लंच डिनर। बीच में आप 11-11:30 बजे कोई ना कोई फल खाओ, 200 ग्राम फल खाओ, और शाम को 5-6 बजे हल्का सा कुछ ना कुछ खाओ। अगर 5 बार नहीं होता तो 4 बार खाना है। बाबा ने 80 साल पहले नियम बनाया है, इधर मधुबन में देखना, यहाँ 8 बजे नाश्ता मिल जाता है, 12-1 बजे लंच मिल जाता है, रात को 8 बजे डिनर मिल जाता है, शाम को हल्का सा पॉपकॉर्न चिवड़ा बाबा ने बनाया। बाबा ने कभी बोला नहीं बच्चे 2 बार खाओ, 12 बजे तो पानी नहीं पियो, बाबा ने कभी कहा? तो डोंट फॉलो ब्रदर सिस्टर, बहुत लोग बहुत बातें आपको बताएंगे, फॉलो फादर, बाबा ने जो कहा ऐसा करना है। कम से कम 4 बार, नहीं तो 5 बार खाओ तो बहुत अच्छा है। सवेरे उठते ही अगर 4-5 बादाम भिगो के रखे हो, 2-3 अखरोट भिगो के रखो, खाओ, बहुत अच्छा। एक्सरसाइज करने से पहले खा लो तो बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। कोई फल खा सकते हो, थोड़ा सा दूध भी पी सकते हो। ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, इसलिए ड्राई फ्रूट थोड़ा सा खाना है। 5 बादाम खा सकते हो, 10 बादाम खाएंगे तो 100 कैलोरी हो जाता है। अभी कैलोरी आता हूं मैं बताऊंगा, 8:30 तक बैठेंगे ना सभी, मुझे 8:30 बजे तक कहा गया था, इसलिए तो मैं डाइट पूरा कंप्लीट करता हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे ना, पक्का? ठीक है। तो बता रहा था कि ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं खाना है, 5 बादाम 2 अखरोट खाओ, सफिशियंट है। आप कभी कभी चेंज के लिए अंजीर ले सकते हो, बहुत सारी ड्राई फ्रूट है, थोड़ा बहुत खा लो चलेगा, ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। मैक्सिमम एक हाथ में जितना आता है 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट, इतना खाना।
जैसे ड्राई फ्रूट में 5 बादाम,
हाँ,
2 अखरोट,
हाँ, 1 अंजीर खा सकते हो,
कर सकते हैं,
खाओ ज्यादा, हाँ चलेगा। हाँ, कभी ये ऐड करो ना,
हाँ,
बादाम और ये अखरोट ये फिक्स है, बाकी कभी अंजीर कभी खजूर कभी कभी पीनट। हाँ, मूंगफली इज कॉल्ड पुअर मेन्स बादाम, जो 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 बादाम को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैं उनको कहता हूँ मूंगफली खाओ, दोनों में न्यूट्रिएंट्स कैलोरी सेम है। तो जो हाँ, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, उससे भी ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा खाना है। मैं बता रहा ना, एक मुट्ठी कोई भी नट्स खाओ चलेगा, सारे दिन में एक मुट्ठी नट्स खाना, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा आपका, इसलिए कह रहा हूँ। सुनो, कोई बाहर का प्रोटीन फोटीन खाने की जरूरत नहीं, आपको डेली एक मुट्ठी दाल खाते हो तो आपके बॉडी के जितना प्रोटीन चाहिए सफिशियंट है। और ओल्ड एज में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जब ग्रोइंग एज होता है उस समय प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। इस समय प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपके किडनी पर लोड पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। जिसको यूरिक एसिड ज्यादा है, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, उनको प्रोटीन कम खाना है। जिसके किडनी पर असर हो गया उनको प्रोटीन, घुटने की दर्द के लिए नहीं। तो 5 बार खाना है, क्लियर। अभी क्या खाना है, सवेरे से लेकर रात तक मैं बताता हूँ, सुनिए। सवेरे उठते ही बताया, ड्राई फ्रूट थोड़ा ले लो, कोई भी फल, सीजन का फल ले लो, एप्पल खाना कोई ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी फल खा लो थोड़ा, फिर एक्सरसाइज करना। चाय नहीं पियो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चाय हमारे देश में कोई नहीं पीता था। 200 साल पहले हमारे देश में चाय कोई नहीं पीता था, अंग्रेज लोग चाय हमारे देश में लेके आए। और चाय एक एडिक्शन है, चाय नहीं पियो तो फ्रेश नहीं लगेगा, चाय नहीं पियो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, चाय नहीं पियो तो मूड खराब होगा, सुस्ती आएगी, बहुत सारी बातें। चाय पियेंगे ज्यादा तो आपको एसिडिटी होगी, भूख मिट जाएगी। चाय ये एडिक्शन, क्यों पीना है? मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? चाय हमारे देश में अंग्रेज लोग पहले लेके आए और मुफ्त पिलाए, ड्रम ड्रम, और मुफ्त तो जहर भी पी जाएंगे लोग। जब चाय आदत हो गया तो फिर लोग बेचना शुरू कर दिए। हमारे देश में 2 ब्रांड चाय मिलता था पहले, लिप्टन ब्रुकबंड। फिर आजकल देखो, मैं एक बार चाय फैक्ट्री देखोगे ना, जिंदगी भी नहीं पियोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद आसाम जाके देख के आया हूँ, जिंदगी भी नहीं पियोगे। चाय के बदले गरम गरम पानी में आधी नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा जीरा पाउडर उसमें डाल दो, तो देखना, लेमन टी सोच के पियो ना। आप जानते हो जो अंबानी का बेटा कितना किलो कम किया जानते हो? कैसे कम हुआ? चाय, रुजुता देवेकर जो हाईएस्ट पेड डाइटिशियन ऑफ आवर कंट्री, उनको चाय बिल्कुल मना किया, बिल्कुल चाय नहीं पीना। आप चाय ज्यादा पियेंगे तो वेट बढ़ेगा। एक कप चाय छोड़ो, दूध और चीनी वाला चाय, साल में 5 किलो वेट कम होगा। जिनका वेट नॉर्मल है उनका कम नहीं होगा, जो ओवरवेट है उनका कम होगा। तो चाय अगर नहीं पियो तो बहुत अच्छा, अगर आपको पीना ही है तो एक बार पियो, चाहे ग्रीन टी पियो, एक बार पियो, बार बार नहीं पीना है, ठीक है। और सवेरे सवेरे नींबू पानी पी लो, 2-3 ग्लास पी जाओ। एक ग्लास में आधी नींबू निचोड़ के गरम गरम लेमन टी सोच के पी लो ना, 2 ग्लास पी जाओ, थोड़ा टहल के आओ, फिर 1 ग्लास पानी पी जाओ, पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद आप ड्राई फ्रूट लेके आप एक्सरसाइज करो, कोई भी फल ले सकते हो, दूध भी पीना है तो एक कप पी सकते हो। नाश्ते में क्या करना है? नाश्ते में घर में सबका स्प्राउट होना चाहिए, मूंग मेथी चना, उसमें मूंगफली डाल सकते हो भाई साहब, मूंगफली डाल सकते हो, स्प्राउट कर दो, थोड़ा सा गरम गरम पानी में भिगो के रख दो। नहीं तो आप बारीक बारीक सारे सब्जियां काट के उसमें आप स्टीम कर दो, जैसे इडली को ढक देते हैं स्टीम हो जाता है, 2 मिनट के लिए स्टीम कर दो, आपको बहुत सॉफ्ट होगा और ओल्ड एज में खाने में हजम होगा, कच्चा खाएंगे तो हजम नहीं होता है। तो स्टीम कर दो, उसमें धनिया पत्ता डाल दो, हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, खाने के लिए बहुत अच्छा है। कभी उसमें मकई के दाने डाल दो, कभी अनार दाना डाल दो, कभी एप्पल काट के डाल दो, वैरायटी बना के डेली अंकुरित एक कटोरी होना चाहिए। बाकी घर में जो भी नाश्ता बनता है, पोहा उपमा दलिया रोटी जो भी बनाते हो, उसमें सब्जियां 50% होना चाहिए। पोहा इतना, सब्जियां इतनी, दलिया इतना, सब्जियां इतनी, जो भी बनाते हो सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। इस उम्र में सब्जी जितने भी खाओगे आपको कोई नुकसान नहीं है, सब्जी में बहुत कम कैलोरी होता है। देखो किसमें कितना कैलोरी होता है थोड़ा समझ जाओ तो आपको समझ में आएगा। इस उम्र में आपको सबको 1200 से 1500 कैलोरी खाना चाहिए, 1200 से 1500 कैलोरी। आप गिनती कैसे करोगे सुना देता हूँ, सुनिए। पानी में कोई कैलोरी नहीं होता है, जितना पानी पी लो कोई कैलोरी नहीं है, 0 कैलोरी। कोई भी विटामिन्स मिनरल्स खाते हो, फाइबर खाते हो, उसमें कैलोरी नहीं होते हैं। जितनी सब्जियां है, इस सब्जियों में 20 कैलोरी होता है, 100 ग्राम लोगे तो 20 कैलोरी, कच्चा हो या पका हुआ हो, 100 ग्राम लोगे तो 20 किलो। अगर सब्जी को पकाते हो तो उसमें खूब तेल डाल दिया तो फिर तो ज्यादा कैलोरी होगी। कम से कम तेल वाला लेते हो तो 100 ग्राम खाते हो तो 20 किलोरी। हर घर में एक कटोरी जो है, कटोरियां सेम साइज का रखो, इतना बड़ा कटोरा इतना बड़ा कटोरी ऐसा नहीं, सेम साइज का 100 ml पानी आएगा इतना साइज का कटोरी रखो। एक कटोरी सब्जी खाते हो तो 20 किलोरी, अगर तेल डाल दिया तो 50 किलोरी होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। तो सब्जियां जितने खाते हो, हरी सब्जियां, खाली आलू नहीं, आलू गाजर बीट जो जमीन के नीचे होते हैं वो 100 किलोरी हो जाता है, वो सारा नहीं। मूली खा सकते हैं, मूली में ज्यादा सब्जी कैलोरी नहीं होती है, लेकिन मूली बदबू आता है तो इसलिए मना किया जाता है। तो बाकी हरी सब्जियां जितनी खाओ, पत्ते वाला जो भी सब्जियां, उसमें 20 किलोरी। कुछ चीजें 50 किलोरी होता है, कौन सी चीज में 50 किलोरी, जितना फ्रूट्स खाते हो, 100 ग्राम का फ्रूट है तो 50 किलोरी। जैसे एक एप्पल खाया, 200 ग्राम यूजली होता है, एक किलो में 5 एप्पल आता है इतना साइज का, अगर 100 ग्राम का एप्पल होगा तो उसमें 50 किलोरी होगा, 200 ग्राम होगा तो फिर 100 किलोरी होगा। तो जितने भी फल खाते हो वो फल में 50 किलोरी होता है, केला और मैंगो को छोड़ के, केला और मैंगो छोड़ के उसमें से कैलोरी, उसमें कैलोरी ज्यादा होता है। पपाया सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वैरायटी फ्रूट्स खाओ, एक फ्रूट नहीं, मिक्स फ्रूट खाओ, कभी क्या कभी क्या कभी क्या खाओ, फ्रूट्स खाओ तो 100 ग्राम में 50 किलोरी, समझ में आया। अच्छा, कुछ किलो कुछ चीजों में 100 ग्राम में 100 किलोरी होता है, कौन सी चीजें, जितने अनाज और जितनी दालें, जितने भी अनाज और जितने दालें, पका हुआ कच्चा नहीं, पका हुआ अगर 100 ग्राम अगर चावल खाता तो 100 कैलोरी, 100 ग्राम का अगर एक ब्रेड खाया कि रोटी खाया 100 कैलोरी। गेहूं बाजरा मकई जवार ये सब सेम चीज है, रागी ये सब सेम, ये सबको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, अनाज कहते हैं। तो उसमें आप जिसको डायबिटीज है, अनाज कम खाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, दो कटोरी दाल खा जाओ, लेकिन चपाती चावल थोड़ा सा खाओ, दो चपाती खाने हैं, नहीं तो चावल खाना है तो एक कटोरी चावल एक चपाती खाना है, ठीक है। एक एवरेज साइज का अगर चपाती लेते हो बिना तेल घी वाला, 100 कैलोरी होता है, उसमें लगा दिया घी तेल तो फिर 150-200 किलोरी हो जाएगा। पराठा खा लिया अच्छी तरह से घी लगा के बटर लगा के तो 200-250 किलोरी हो जाएगा। तो इसलिए अनाज जितने खाते हो तो 100 ग्राम में 50 किलोरी, समझ में आया, और नहीं 100 किलोरी। कुछ चीजों में 500 किलोरी होती है, 100 ग्राम खाओ तो 500 किलोरी, कौन सी चीज है, नहीं नहीं, जितनी भी मिठाइयां और जितने तली हुई चीजें, जितनी मिठाइयां जितनी तली हुई चीजें वो 100 ग्राम खाओ तो 500 किलोरी उसमें है। जैसे जलेबी खा लिया 100 ग्राम 500 किलोरी, समोसा खा लिया 500 किलोरी, रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया 100 ग्राम खाया 500 किलोरी। तो पनीर में थोड़ा कम होगा, उसमें तो बताता हूं आपको। नेक्स्ट है, कुछ चीजें 100 ग्राम में 1000 किलोरी होती है, जैसे कि बटर मक्खन घी तेल। मान लीजिए आप घर में दो लोग हो और दो लोग के लिए एक सब्जी बनाया कि कुछ तला पकौड़ा बनाया, 200 ग्राम तेल यूज कर लिया तो 200 ग्राम में कितना कैलोरी हो गया, 2000 कैलोरी। आप दो लोग खाते हो, पकौड़ा खा लिया, 2000 तेल खा गया तो खाली 2000 कैलोरी हो ही गया आपका सारा दिन का। तो हम सोचते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन सवेरे कुछ नहीं खाया, एक ग्लास दूध पिया, एक कप चाय पिया और दो समोसा खाया और थोड़ा सा गुलाब जामुन एक खा लिया, एक आम खा लिया और थोड़ा ब्रेड खा लिया, कुछ नहीं खाया, एक कटोरी रबड़ी खा लिया बस। एक कटोरी रबड़ी 650 कैलोरी, एक कटोरी रबड़ी इतना खाते हो 650 कैलोरी। तो हम कितने कैलोरी खाते हैं, जब कॉन्शियस बन जाओगे, जो सोल कॉन्शियस के साथ साथ कैलोरी कॉन्शियस बन जाता है उसका वेट ठीक रहेगा, वो समझना जरूरी है। तो इसलिए सवेरे देखिए नाश्ते में जितनी सब्जियां डालो डालो, 500 कैलोरी और 1000 कैलोरी को अवॉइड करो। कभी कभी स्प्राउट्स लो, सेम कैलोरी सेम है, बासी हो फ्रेश हो, बासी को उसको बना के कुछ खाओ तो ठीक है, बासी चीजें सात्विक नहीं है, कुछ बना के खाओ ऐसे बासी को, बासी चीजें बाबा ऐसे भी सात्विक नहीं कहते हैं, अच्छा नहीं, बच गया तो फेंके भी नहीं ना, उसको कुछ बना के खाओ। तो मेरा कहने का मतलब सवेरे सवेरे नाश्ते में स्प्राउट हो और कोई भी जो भी बनाता हो सब्जियां खूब डालो, 11 बजे कोई ना कोई फल खा लो, कभी कोई कभी कोई। आपको डायबिटीज है तो आम नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है और
सीताफल रामफल आदि अवॉइड करो, अंगूर अवॉइड करो, बनाना केला अवॉइड करो, अनानास अवॉइड करो, आपको अनार भी खाना है तो थोड़ा खाना है, जो बहुत मीठा फल है जिसको डायबिटीज से अवॉइड करो तो अच्छा है, बहुत मीठा फल अवॉइड करो, ठीक है, खा सकते हो 200 ग्राम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 200 ग्राम कुछ भी खा सकते हो, कोई नहीं, ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा और शुगर भी बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट 1 बजे जब लंच करते हो 12-1 बजे, तो उस समय छाछ जितना पीना है पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई लोगों को टॉयलेट नहीं होता, घुटने में दर्द होता है, तो छाछ पी जाओ, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा, 2 गिलास छाछ पी जाओ, और गुजराती दाल जैसा गुजराती दाल बनाओ, 2 कटोरी दाल पी जाओ, 3 कटोरी सब्जी खा जाओ, लेकिन चपाती फिक्स रखना है, 1 चपाती खाना है, 1 कटोरी चावल, और खाली चपाती खाना है तो 2 चपाती, पराठा आदि खाना है कभी कभी तो हफ्ते में 1 दिन चलेगा, लेकिन डेली घी लगा के नहीं, उसमें वेट बढ़ेगा। अगर रोटी में अगर स्टफ डाल देते हो, जैसे उसमें मेथी डाल देते हो या कोई भी साग डाल देते हो या कोई ग्रेट करके कोई भी सब्जी डाल देते हो, तो बहुत अच्छा है, तो हल्का सा तेल देके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, खा सकते हो, क्यों मना नहीं, सब प्रकार का तेल, 4-5 प्रकार का तेल रखो, सारे एक व्यक्ति के लिए महीने में 0.5 लीटर ही तेल घी यूज होगा, एक व्यक्ति घर में अगर आपके 4 फैमिली मेंबर है तो 2 लीटर ही तेल घी यूज होगा महीने में, मेहनत करेंगे तो पूरा खाली 1 किलो घी खा जाओ तो भी हजम हो जाएगा, कहीं घूमना नहीं है, एसी हॉल में बैठे रहना, एसी कार में बैठे रहना, टीवी देख रहना, घी खाते रहना, कोल्ड ड्रिंक पीते रहना, वाह खाओ, तो घी मना नहीं है, घी खाना मना नहीं है, घी खाओ लेकिन उसको बर्न करो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनाता हूँ, सुनिए कान खोल करके, आजकल बीपी 50% लोगों को बीपी हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर, क्यों हो रहा है, क्योंकि पसीना नहीं छूट रहा है, आप जो नमक खाते हो, हमारे भारत में सर्वे किया गया, भारत में 4-4 गुना नमक और तेल घी खा रहे हैं, हमारी माताएं 4-4 गुना खिला रहे हैं, जितना खाना चाहिए 4 गुना, तो इसलिए भारत में सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, सबसे ज्यादा डायबिटीज, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचना है, देखो आप जितना भी नमक खाते हो वो किससे निकलता है बॉडी से जानते हो, आपके पसीने से, पेशाब से भी इतना नहीं निकलता है, पसीने से निकलता है, कितने लोगों का पसीना निकलता है, हार्डली, बहुत कम, थोड़ा बहुत, पहले जमाने में जैसे धूप में जाके एकदम मेहनत करते थे, पसीना में भीग जाते थे, होता नहीं, इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन नमक ज्यादा, तो हर एक की प्रकृति अलग अलग है, आपका बॉडी ऐसा है, बहुत लोग हाथ भीग जाता है पूरा रुमाल में ऐसे करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमें एक्सरसाइज करके पसीना निकालना है, एक्सरसाइज करके पसीना निकालना है, तो पसीना निकलेगा तो आप नमक बहुत कम करो, बहुत बहुत कम, एक्स्ट्रा नमक डाल के बिल्कुल नहीं खिलाना है, नहीं सब अलग अलग, आपको देखिए महीने में अगर 4 किलो आपको यूज होता है घर में, 8 फैमिली मेंबर है तो 4 किलो यूज होगा, तो 1 किलो घी, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो मूंगफली का तेल, 1 किलो सनफ्लावर का तेल, ऐसा यूज करो, सनफ्लावर की सफोला कोई भी, कि सोयाबीन, तिल का तेल कोई भी, तलने के लिए याद रखिए राइस ब्रांड तेल में तलना है, समोसा कचौरी पकौड़े कोई भी टोली बनाते हो, राइस ब्रांड तेल, RICEBRAN, राइस ब्रांड, उसमें कम से कम एब्जर्व होगा, कम तेल कम एब्जर्व होता है, तो राइस ब्रांड तेल में ही सारा टोली बनाना है, कान खोल करके सुनो, लिख के रखो, बाकी दूसरे तेल में नहीं, बिल्कुल खाली सनफ्लावर खाने से हार्ट अटैक होता है ज्यादा, आपको नहीं पता है, राइस ब्रान, देखो घर में 4 वैरायटी तेल रखो वो खाने के लिए, एक है घी, दूसरा है सरसों का तेल, तीसरा है मूंगफली का तेल, चौथा है सनफ्लावर की सफोला का तेल, ये सबको मिला के एक कैन में नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, 2-4 दिन ये तेल, 2-4 दिन वो तेल, 2-4 दिन वो तेल, 2-4 दिन ये तेल, और तलना है तो राइस ब्रान तेल में तलना है, इतना याद रखो, ठीक है। शाम को हल्का फुल्का कोई भी, देखो सवेरे 2-3 वैरायटी सब्जी बनाओ, सब्जी से पेट भर जाए, छाछ 2 गिलास पी जाओ, सवेरे खाना खाने से पहले 1 गिलास छाछ पी जाओ, फिर 1 चपाती को 8 टुकड़ा कर दो, इतने टुकड़े में इतनी सब्जी खाओ, ऑटोमेटिक भर जाएगा, इस उम्र में कितना चाहिए आपको, सब्जी खा के पेट भरो, दाल पी के पेट भरो, छाछ पी के पेट भरो, लेकिन चावल चपाती ज्यादा नहीं खाओ, तो शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा, चावल चपाती कम खाओ, 1 कटोरी खा सकते हो, और शाम को 4-5 बजे भेलपुरी बना के खाओ, चना चाट बना के खाओ, परीज बना के खाओ, आप टमाटर सूप वेजिटेबल सूप बना के पियो, और रात को 1 चपाती
थोड़ी सी खिचड़ी बनाते हो तो 50% उसमें दाल डाल दो, छिलका वाला दाल डालो तो बहुत अच्छा है, चावल आधा चल, हाँ चले चले, लेकिन साथ में सब्जी हो खाली, हाँ कड़ी बना के खा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रात को सोते समय एक कप दूध, सवेरे नाश्ते में दही खाओ ठीक है, दोपहर को छाछ पियो ठीक है, रात को एक कप दूध पियो ठीक है। ऐसे खाने में परिवर्तन करोगे तो बहुत अच्छा होगा। होटल में आउटिंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनके दोनों माँ बाप को डायबिटीज था, 6 भाई बहने हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खोलोगे तो हम भी आ जाएंगे खाने के लिए। सुनिए मेरा एक फ्रेंड, सुनिए मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, मेरा एज का है, दोनों भाई बहन, दोनों माँ बाप को दोनों को डायबिटीज था, 6 भाई बहन है, ये बीच वाला है, उसके बड़े भाई बहनों को भी डायबिटीज हो गया, छोटे भाई बहनों को भी डायबिटीज हो गया, इसको अभी तक नहीं हुआ, बोला कि होने नहीं दूंगा। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, और बाहर का कॉन्फ्रेंस जाता हूं कहीं जाता हूं देखता हूं बिल्कुल नहीं खाता है, सिंपल घर में खाएगा जो भी घर का चीजें खाएगा, बिल्कुल नहीं, अभी तक हुआ नहीं। तो आपके हाथ में, स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है, आप इधर उधर सोशलाइजेशन करने के लिए, खुश करने के लिए खाओ, फिर भूखते रहो, नहीं खाना है बिल्कुल नहीं, एक नियम बनाना हमारा नियम है। तो खाने पीने जब तक ठीक नहीं करोगे आपको बीमारियों से ठीक नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो खाना पीना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये 3 बातें अच्छी तरह से करोगे तो जीवन में सदा बाबा आपको वरदान देंगे हेल्दी रहने के लिए। अभी खड़े हो जाए सभी, जी देखो मैं विदेश भी जाता हूँ, 5-5 दिन भी, तो कभी भी नहीं खाता हूँ बाहर का, बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स खा के रहता हूँ, दूध पी लूंगा। आपको सिंपल बता देता हूँ आप टेक्निक, एक सैंडविच मेकर ले लो, आजकल एक सैंडविच बनाने का छोटा सा मशीन आता है, आटे का ब्रेड ले लो, ककड़ी टमाटर साथ में खरीद लो कहीं से भी, उसमें लगा के हरी मिर्ची काट के लगा के सैंडविच बना के खा लो, देखो एकदम पेट भर जाएगा, कोई जरूरत नहीं, सिंपल है। आपको कभी सैंडविच ले लो घर से, कुछ थेपला बना के ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन बाहर के चीज फ्रूट्स ले लो ना, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल ले लो, दूध पी लो, छाछ पी लो, बाहर से मिलता है, क्या प्रॉब्लम, तो हाँ ले सकते। खाली मुरमुरा खाएंगे जिसको डायबिटीज से शुगर बढ़ेगा, क्योंकि वो उसका चावल का चीज है। खाओ, लेकिन कोई भी चीज मात्रा में खाएंगे कुछ नहीं होगा जी। यस चलिए, खाली एडी टच होगा, सामने पांव नहीं रखना है, खाली एडी टच करके ले आना, 1-2 पहले स्लो फिर फास्ट, 1-2 1-2 1-2 एक अविफास
वन टू बाबा मेरा मन बहलाते हैं बाबा जैसे सुरों में सरगम
रखना नहीं एक दो फास्ट वन क्यों गाओ गाओ ताल मिले नहीं हो रहा है एक दो वेरी गुड वन टू एक दो एडी तो छोगा सेम अभी पांव पीछे जाएगा एक दो एक दो एक पांव पीछे जाएगा एक दो अभी फास्ट होगा चलिए चलते रहिए मिलिट्री में जैसा अभी पांव को ऊपर उठाना है देखिए गाओगे सभी
मेरे
संग चलते हैं बाबा सुनिए एक बात सुनिए लास्ट बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत है मैं अभी एक साइंटिस्ट का मेरे पास रिसर्च स्टडी आया बैठो जी एक मिनट रिसर्च स्टडी आया उसमें उन्होंने कहा एक हार्ट हॉस्पिटल में कम से कम 15-20 पेशेंट को लिया जिसका बाईपास सर्जरी होना था ब्लॉक था उन्होंने खाली ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार फिर
एक्सरसाइज 3
आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, गीत लगा लो, नाचो भी गाओ भी, कितना अच्छा है।
इसको डायबिटीज का सीडी लेना है, पूरा वीडियो है
आपका, कौन
आपका सारे क्लासेस है। मैं दिल्ली जाके 10 दिन तक वहाँ रह के 8-8
घंटा स्टूडियो में रिकॉर्ड कराया हूँ, जो सारी पीस ऑफ पॉइंट चलने तो थोड़ा थोड़ा आता है पूरा। अगर डायबिटीज के साथ कैसे जीना है सीखना है तो ये रिसेप्शन में सुरेंद्र भाई है, उनको कहेंगे तो लाके दे देगा, हॉस्पिटल में मिलता है। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत, जिम खाना हेल्थ क्लब कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे कैसे एक्सरसाइज करना बाबा की गीत के साथ, कंप्लीटली फिट हो जाओगे। यही एक्सरसाइज जो मैं सिखाता हूँ यही करके एक माता, मैं अभी भावनगर से आया, 8 महीने में 19 किलो कम की है, सब कुछ डायबिटीज खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सिंपल एक्सरसाइज में जो सिखाता हूँ करो, देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और एक्सरसाइज का और डायबिटीज का डिवीडी जिसको लेना है सुरेंद्र भाई को कांटेक्ट करेंगे, लाके आपको दे देगा। सब हर कोई कर सकता है, खाली डायबिटीज, मैं खाली डायबिटीज डिपार्टमेंट में
सिंपल बताया,
मैं जो बताया ये सबके लिए है। एक तो डायबिटीज का डिवीडीज है पूरा, डायबिटीज में सब कुछ बताया हूँ, खाना पीना, दूसरा एक्सरसाइज का डिवीडी। हाँ हाँ सब सब पूरा पूरा फुल एक्सरसाइज है, आपको होल बॉडी का ठीक हो जाएगा, देखना आपको सारा आप करिएगा, आप देखना क्या फायदा
है ना। ट्रैपिंग ट्रैपिंग ट्रैपिंग
सब ठीक
ट्रैपिंग ट्रैपिंग
ओके। ओम शांति, थैंक यू।